दाने हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे वरदान।
शांति। इस बोडली यूनिवर्सिटी में बाबा ने हम सभी को एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि बच्चे तीन सर्टिफिकेट आप सभी को लेने हैं, स्वपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। आज हम सभी के बीच में यज्ञ के ऐसे बहुमूल्य रत्न उपस्थित हैं कि जिन्हों को प्रैक्टिकल में ये तीनों ही सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। सारे विश्व में जहां जहां भी बाबा के बच्चे हैं, हम दीदी के साथ फ्रांस गए थे, पेरिस में अचानक सेंटर पर गए, तब वो पेरिस के भाई बहनों का चेहरा देख, ओ उषा दीदी, हाँ विश्व पसंद आत्मा है। यहाँ पर भी जब भी भट्टियाँ होती हैं और पता चलता है कि उषा दीदी का क्लास है, तो सबके दिल के अंदर एक आनंद की, खुशी की, प्रसन्नता की लहर छा जाती है। तो ऐसी सर्वप्रिय प्रभु प्रिय आत्मा आज हम सभी के बीच में है। हम फिर से दीदी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से आपने अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित किया है। समग्र भारत देश के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स को फैलाने आप निमित्त बने हैं। नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कंपनी जो हैदराबाद के अंदर है, वहाँ पर आपने यह ट्रेनिंग शुरू कराई और वह इतनी प्रिय बनी, इतनी अनेक आत्माओं की पसंदीदा बनी कि जो आज वह ट्रेनिंग हर कंपनियों के अंदर, आजकल तो सब कराने लगे हैं, लेकिन हर कंपनीज के अंदर मैनेजर्स, ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग इस ट्रेनिंग के द्वारा बहुत कुछ जीवन जीने की कला को सीखते हैं। आदरणीय उषा दीदी जी के प्रवचन जी जागरण, सोनी, संस्कार, आस्था, ऐसे अनेक चैनलों पर आते रहते हैं। साकार मुरली में हर सप्ताह में कम से कम बाबा एक दो बारी गीता के भगवान को याद करते हैं। आप इसके भी माहिर हैं, गीता के भगवान के कार्यक्रम, शिबिरे, सप्ताह, पूरे भारत देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर आप निरंतर कराते रहते हैं। आज हम सभी के बीच में हैं, हम सुनेंगे निर्विघ्न स्थिति। आदरणीय उषा दीदी जी,
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को अनेक ज्ञान रत्नों से सजाए हैं। प्रतिदिन की मुरली में बाबा हम बच्चों को अनेक युक्तियां बताते हैं आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए। साथ ही साथ हम सभी ब्रह्मावत्स कैसे हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ भी बनाएं, निर्विघ्न भी बनाए, उसकी भी विभिन्न समय प्रति समय बातें हमें मिलती रहती है। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए भी बाबा इशारा देता तो साथ में अपनी स्थिति को बहुत ऊंची बनाने के लिए भी प्रेरणा देता है। लेकिन समय प्रति समय फिर भी हर ब्राह्मण ही अनुभव करते हैं कि चलते चलते कोई न कोई ऐसे विघ्न आ जाते हैं जो विघ्नों के कारण हम चढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी कहीं डाउन हो जाते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में यही आश्चर्य की बात सुनाई कि भगवान को भी आश्चर्य लगता है कि कैसे विघ्नों के वश होकर के बच्चे बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। ये तो जरूर है कि कई लोग ये भी कहते हैं अगर विघ्न आए नहीं तो कितना अच्छा, लेकिन ड्रामा में हर चीज में कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया है। तो विघ्नों का आना ये भी कल्याणकारी है, क्योंकि कलयुग में अगर विघ्न नहीं आएंगे तो क्या सतयुग में आएंगे? बाद में तो आना ही नहीं है, विघ्न का आना भी कलयुग में ही है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का बने तो माया को चैलेंज जो किया है तो माया भी देखती है, अच्छा देखे तो सही ये कितना भगवान का मुरीद बन करके चल रहा है, अब टेस्ट लेते हैं इसकी, है ना? तो बाबा का हाथ पकड़ करके हमने माया को चैलेंज किया है तो विघ्न तो आएंगे, ये परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन ये परीक्षा भी हमें नित्य आगे बढ़ाने का आधार बन जाती है। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं बच्चे परीक्षा को परीक्षा नहीं समझो, तूफान को तूफान नहीं समझो, विघ्नों को विघ्न नहीं समझो, लेकिन आगे बढ़ने का एक आधार है, ये बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए आई है। तो इसीलिए विघ्न आना ये भी ड्रामा में कल्याणकारी है। विघ्न कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? देखो हम सभी जानते हैं ना, हमारी ही अपनी कोई न कोई कमजोरी विघ्नों के आने का द्वार बनती है, सबसे पहली बात। दूसरा, कोई न कोई कमी विघ्नों के आने का द्वार बनती है। एक है कमजोरी, एक है कमी। किस बात की कमी? सहनशीलता की कमी। और किसकी कमी? धैर्यता की कमी। अधीरता आ जाती है, सहन शक्ति नहीं, जल्दी आवेश में आ जाते हैं, है ना? कोई न कोई गुणों की कमी, धैर्यता की कमी, गंभीरता की कमी। ज्ञान हमारे पास है लेकिन ज्ञान को सही समय पर यूज न कर पाने की कमी, है ना? बुद्धिमानों की बुद्धि ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दे दी है लेकिन समय पर वो बात याद ही नहीं आती है, तो ये कमी हो गई ना। कोई भी कमी हमें कमजोर करती है और इसीलिए कमजोरी आती है। पहला कारण ये है, इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। कोई भी विघ्न आने का कारण कमजोर मन की शक्ति है। और कमजोर क्यों हुए? क्योंकि कमी है अपने जीवन में, इसीलिए बाहर से विघ्न बहुत कम आते हैं। विघ्नों का आने का कारण कहीं हमारे अंदर से ही है। दूसरा कारण है विघ्नों के आने का कि कई जन्मों का संस्कार, स्वभाव और संस्कार जो बन गया है, वो स्वभाव संस्कार हमारे सामने विघ्न खड़ा करते हैं। जब भी वो संस्कारों का प्रयोग होता है, अयोग्य संस्कार, अयथार्थ संस्कार, कोई न कोई पुराना संस्कार उसके जब वश हो जाते हैं, उसका प्रयोग होने लगता है कर्म में, संबंधों में, वहां से विघ्न खड़े होते हैं। और ये तो जरूर है कि कई आत्माओं के साथ हमारा जन्म जन्मों का पार्ट चला है, तो कई जगह पर कर्जा बाकी है, तो कर्जा लेने के लिए भी वो आत्माएं विघ्न खड़ा तो करेगी, है ना? तो ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण है, कहीं न कहीं हम अपनी श्रीमत की मर्यादा की या कोई भी दिनचर्या में अवज्ञा या कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। मान लो अमृत वेला मिस हो गया या मुरली क्लास हमारा मिस हो गया या कोई न कोई धारणा में त्रुटि आ गई, तो वहां से विघ्न खड़ा होना ही है। तो ये तीन कारण है, कमी कमजोरी, संस्कार स्वभाव का प्रयोग होना, और तीसरा हमारी कोई न कोई जो धारणा मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में कहीं गफलत हुई तो वो गफलत ही कोई न कोई विघ्न को खड़ा करेगा। तो इसीलिए विघ्न आना ये स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए कहा बाहर से विघ्न कम आते हैं, लेकिन हमारे अपने तरफ से विघ्न के आने का ज्यादा मार्जिन है ना? दूसरी बात के निर्विघ्न हमें क्यों बनना चाहिए, क्योंकि हम सभी ब्रह्मावत यज्ञ रक्षक हैं। यज्ञ हमारा है और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है। बाबा की उस दिन की साकार, तीन चार दिन पहले की साकार मुरली में आया कि जब हम कोई न कोई पुराने संस्कार के वशीभूत होते हैं, माना हम यज्ञ के अंदर यही तो हड्डियां जो दिखाते हैं ना, हड्डियां गिरती है, तो ये हड्डियां गिरती है। तो इसीलिए हम सभी यज्ञ रक्षक हैं। तो यज्ञ में हमारे कारण कोई भी विघ्न न आए, उसके लिए हमें अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। भले वो विघ्न चाहे हमारे पर्सनल लेवल पर आता हो, हम सोचते हम यज्ञ के लिए थोड़ी कोई ये है, लेकिन क्योंकि हम यज्ञ की इकाई है तो उसका प्रभाव कई आत्माओं पर पड़ेगा। मैं अगर यज्ञ के माना विघ्नों के साथ झगड़ा कर रही हूँ या युद्ध कर रही हूँ, तो उसका प्रभाव, क्योंकि मैं ईंट हूँ यज्ञ की एक नींव हूँ या मैं यज्ञ की एक इकाई हूँ, तो उसका प्रभाव आसपास में जरूर पड़ता है कि आसपास के लोगों को भी हम कमजोर करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो इसलिए विघ्न को समाप्त करना, जितना जल्दी उसको समाप्त करे, टेंशन में आ जाए, तो तो कैसे आएंगे, कैसे विघ्न को समाप्त करने वाले या निर्विघ्न हम बने, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाएं। सबसे पहली बात, निर्विघ्न बनने के लिए लगन, बाबा के साथ की लगन को बढ़ाएं, क्योंकि ये लगन ही अगन का काम करेगा और ये अगन भस्म कर देगा वो विघ्न आने से पहले। इसलिए बाबा के साथ की अपने याद के चार्ट को, लगन को, इतना बाबा के साथ हमारा प्यार हो जो वो लगन का रूप ले ले, मगन होने लगे, और यही स्थिति अग्नि को उत्पन्न करेगा और ये अग्नि उसको भस्म कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप अपनी योग तपस्या को बनाओ, ताकि विघ्नों को हम सहजता से भस्म कर सके। दूसरी धारणा, जितनी इम्प्यूरिटी होगी तो विघ्न के साथ में युद्ध करना और उसमें कभी कभी फेल भी हो जाएंगे, इसलिए अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को ऐसी बढ़ाना है, प्योरिटी की शक्ति को इतनी बढ़ाना है जो वो विघ्न हमारे सामने टिक न सके। इम्प्योरिटी विघ्नों को खड़ा जरूर करेगी, प्योरिटी की पावर को बढ़ाना है। तीसरी बात कि विघ्न आने का कारण व्यर्थ या नेगेटिव, कोई भी अगर समस्या आई या प्रॉब्लम आया, विघ्न आया, कोई भी तूफान आया, तो अक्सर हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार, चाहे स्वयं के प्रति हुई क्यों ना हो, दूसरे के प्रति हम भले नेगेटिव ना सोचते हो लेकिन स्वयं के प्रति नेगेटिव शुरू हो जाता है, यह व्यर्थ ही शुरू हो जाता है। तो जब नेगेटिव और व्यर्थ हमारे मन के अंदर आया तो वो क्या करेगा, वो विघ्न को खींचेगा, क्योंकि उस विघ्न के प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। विघ्न आया और चला जाने वाला था जैसे पानी पर लकीर, लेकिन हम क्या करते, जितना व्यर्थ और नेगेटिव सोचते हैं उतना ही उस विघ्न को हम खींच खींच करके लंबा करते हैं। तो समय का जो ड्यूरेशन है उसको, क्योंकि हमने विघ्न को यहां से पकड़ लिया, मनसा में पकड़ लिया उसको, और व्यर्थ संकल्प चलाने लगे उसके प्रति, तो उस विघ्न की को हम इलास्टिक की तरह खींचने लग जाते हैं। जो विघ्न दो दिन में समाप्त हो जाने वाला था उसको दो हफ्ता तक हमने अपने मनसा से खींच खींच करके लंबा किया, और उतना हमें उसकी भोगना का अनुभव होगा। इसलिए उस समय अपने अंदर विघ्नों को सोचने के बजाय इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दृष्टिकोण को बदले। विघ्न आया है तो भयभीत, जब भय आता है क्या होगा, कैसे होगा, भय आया तो ये भय व्यर्थ संकल्प की गति को बढ़ाएगा, और ये व्यर्थ संकल्प की गति बढ़ी तो व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन व्यर्थ भी अगर चालू हो गया तो ये व्यर्थ उस विघ्न की या उस परीक्षा का पेपर को इतना लंबा कर सकता है कि जिसकी भोगना हमें खुद भोगनी होगी। तो जब अगर सोचना ही है तो क्यों नहीं हम सॉल्यूशन का सोचें। इसलिए दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दो तो क्या होगा, अपने मन को एक दिशा दे दो, पॉजिटिव संकल्पों की दिशा, और जब हम पॉजिटिव संकल्पों की दिशा में समर्थ संकल्प आरंभ करेंगे तो वो संकल्प की शक्ति उस विघ्न को सहजता से समाप्त कर सकती है, क्योंकि संकल्पों में जो बल है वो विघ्न को मैग्निफाई भी कर सकता है और समर्थ संकल्प उस विघ्न की क्या इंटेंसिटी को बहुत कम भी कर सकता है। इसलिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बच्चे ये तो कागज का शेर है, ये कागज का शेर है, इससे क्यों डरते हो? तो कोई भी विघ्न आया माने ये कागज का शेर है, बाहर का स्वरूप कैसा भी हो लेकिन अंदर में विघ्नों में ताकत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको कागज का शेर समझो और अपने संकल्पों की गति को व्यर्थ दिशा देने के बजाय समर्थ दिशा की ओर ले चलो, तो वो संकल्प ही उस विघ्न को समाप्त कर देता है। नेगेटिव सोचने के बजाय परिवर्तन शक्ति को अपनाना है। तो ये परीक्षा के प्रति हमें परिवर्तन कर देना, इतना सामर्थ्य अपने अंदर हो कि उसको चेंज कर सके, परिवर्तन कर सके। निर्विघ्न माना ये नहीं कि विघ्न आएंगे ही नहीं, निर्विघ्न का मतलब है कितना जल्दी मैंने उस विघ्न को समाप्त कर दिया, ये निर्विघ्न। विघ्न तो आएंगे, अंत तक बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं कि अंत तक विघ्न आएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ गिरने वाले, ये भी भगवान के महावाक्य है। अभी तो सिंगल सिंगल आ रहे हैं, फिर एक साथ में आएंगे, ये भी भगवान के महावाक्य है ना। तो इसीलिए कितना जल्दी मैं परिवर्तन शक्ति को अपना सकती हूँ और व्यर्थ के बजाय समर्थ शक्ति को मैं अपना सकती हूँ और उस संकल्प से उस विघ्न को मुझे समाप्त कर उस लेवल तक पहुंच जाना है कि विद इन अ सेकंड, उसको कहते हैं निर्विघ्न। बहुत जल्दी मैंने उसको समाप्त कर दिया है ना। तो लगन की अगन से, अपनी प्यूरिटी की पावर से और तीसरा समर्थ संकल्प से उसको मैंने खत्म कर दिया। तो ये तीन तरीके हैं निर्विघ्न बनने के लिए। चौथा तरीका कि जब कोई समझो आत्माओं से मेरे संस्कार ने टक्कर खाई और उन आत्माओं से अगर मुझे पेपर आया, व्यक्तियों से संबंधों से पेपर आया, तो उसको कैसे समाप्त करेंगे? भई इसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है ना, उसके संस्कार को मैं चेंज नहीं कर सकती। हम गलती यही करते हैं कि सामने वाले को रियलाइज कराने का प्रयत्न करने में लग जाते, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये सही बात नहीं है। अब वो व्यक्ति का अपना ईगो लेवल बीच में आता है कि नहीं आता है? ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, है ना? तो क्या होगा, वहां टक्कर बढ़ेगी और वो टक्कर बढ़ने से कई बार वो टक्कर उस स्वरूप तक आ जाती है जो एक नफरत को क्रिएट करती है और नफरत का शिकार भी हमें बना सकती है। इसलिए एक बात याद रखें, हम किसी को चेंज करने की जिम्मेवारी न ले। जहां हम अपने संस्कारों की ले लेवे बहुत है, दूसरों को चेंज करना भी मेरा काम नहीं है, वो खुद खुद को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर वो बार बार विघ्न रूप बनता है तो क्या करे? बाबा ने इसीलिए कहा कि बच्चे तुम उसको दुआएं देना चालू करो, दादी जानकी हमेशा ये बात कहती है, ये सीजन है दुआएं दो और दुआएं लो, आपकी दुआएं उसको परिवर्तन कर सकती है, आपकी शुभ भावना शुभ कामना उसको परिवर्तन कर सकती है, आपके शब्द उस वक्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप देखते हो कि ये आत्मा के संस्कार कहीं मेरे संस्कार के साथ सेट नहीं है, माना कोई जन्मों का कर्जा बाकी है, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नहीं तो और किसी के साथ नहीं। एक क्लास में हम 100 स्टूडेंट अगर है तो और किसी के साथ हमें प्रॉब्लम नहीं आता है, एक दो चार पांच के साथ अगर आता है तो माना कोई जन्मों का, क्योंकि हमने मैक्सिमम जन्म साथ में बिताए हैं, तो साथ में बिताए हैं तो कोई कर्जा जो रहा हुआ है वो चुकाना तो पड़ेगा। उसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय क्या करना चाहिए, समझदारी क्या है, उस आत्मा के प्रति साइलेंस में स्थित होकर उसको दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना दो, बाबा को सौंप दो, बाबा उसको हैंडल करें, मुझे टक्कर में आने की जरूरत नहीं। ये है निर्विघ्न बनना। आत्माओं के साथ भी हमारा संबंध तो है ही, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सबके साथ हमारा संबंध तो है, और इस जन्म में ही हमें सबके साथ मिल करके जीना है। तो उस आत्मा के प्रति यही शुभ भावना दुआएं दो कि बाबा के हर ज्ञान की बात को ये आत्मा भी बहुत अच्छे से धारण कर सके। ये आत्मा बहुत अच्छी बाबा की बच्ची है, बहुत अच्छा हिम्मत रख करके अपने संस्कारों को जानते हुए दाद तो देनी पड़ेगी ना। हर इंसान अपनी कमजोरी को जानता तो है कि कहाँ है मेरी कमजोरी, खुद भी परेशान है लेकिन फिर भी बाबा का हाथ पकड़ के चल रहा है। अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी, उसके अंदर यही है कि मैं संपूर्ण बनूंगा एक न एक दिन, खुद की कमजोरी जानते हुए भी, तो शाबाशी तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो बहुत जल्दी लोग हार जाते हैं। क्योंकि जैसे दुनिया में कहावत है कि हरि का मार्ग आसान नहीं है, हरि का मार्ग सुराना है, सुरवीरों का काम है, नहीं कायर का काम, उस पर कायर व्यक्ति चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों को जानते हुए वो हरि के मार्ग पर चल रहा है। ये भक्ति की कहावत है कि हरि का मार्ग सुराना नहीं कायर का काम, कायर व्यक्ति तो चल नहीं सकता, फिर भी अगर ये हिम्मत रख करके इतने साल बिता चुके, माना उसको अंदर में एक आश है ना, एक न एक दिन मैं संपूर्ण बनूंगा, वो अपने संस्कारों से हारा नहीं है, तो मैं क्यों उसके प्रति शुभ भावना कि ये तो चेंज होने वाला ही नहीं है, उसने अपने आप में हार नहीं मानी है, तो मैं क्यों उसको ये कमेंट दे दूं कि ये तो चेंज होने वाला ही नहीं, ये बुराई है, ये ऐसा ही है, चल ही क्यों रहा है ज्ञान में अगर चेंज ही नहीं होना है तो। लेकिन बेचारे के अंदर एक आश है कि मुझे भी चेंज होना है, इसीलिए तो चल रहा है कि नहीं। तो उसको सिर्फ एक मदद की आवश्यकता है, कौन सी मदद की, थोड़ा बूस्टर चाहिए उसको, तो शायद हमारी दुआएं उसके लिए बूस्टर का काम कर सकती है, हमारी शुभ भावना उसके लिए बूस्टर का काम कर सकती है, तो इसीलिए चलो हम उसको थोड़ा बूस्टर दे देवे, उठ जाएगा शायद, और अगर उठ गया तो वो मार्क्स किसको मिला, हमें मिला ना। तो इसीलिए उसको शब्दों से चेंज करने के बजाय, उसको शब्दों से रियलाइजेशन देने के बजाय क्या करें हम, शुभ भावना शुभ कामना दुआएं देख करके ये बूस्टर लगा दे, शायद वो उससे बाहर नहीं। वही बहुत बड़ी अटक है उसके जीवन में, जिसको क्रॉस करने के लिए इतने सालों से पुरुषार्थ में लगा हुआ है, थोड़ी मदद की जरूरत है, तो थोड़ा एक हाथ दे दिया तो क्या होता है, बड़े से बड़ा कोई वजन उठाकर चलने का प्रयास, थोड़ा हाथ दे दिया तो हल्का हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। आपकी दुआएं व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी शुभ भावना व्यर्थ नहीं जाएंगी और शायद वो आत्मा ऋणी भी हो जाएंगी आपकी और आपके लिए कभी विघ्न रूप बनेंगी भी नहीं। तो इसीलिए ये बूस्टर देना क्या समझदारी है, समझदारी है ना, उसके बजाय ये कहना कि ये तो कभी चेंज होने वाला ही नहीं है। बाबा भी कहना भगवान ने आश नहीं छोड़ी, सोचो आप कि हम कितनी पुरानी आत्माएं, कितने जन्मों से हम पाठ बजाते बजाते एकदम पतित बन गई आत्माएं, उसके प्रति अभी तक भगवान ने आश नहीं छोड़ी, तो हम उसको रिजेक्ट करने वाले कौन होते हैं? भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया, भगवान उसको चला रहा है, तो मैं रिजेक्ट करने वाली कौन होती हूँ? तो चलो थोड़ा बूस्टर दे देते हैं, है ना? बाबा की किरणों की मनसा सेवा उसको मदद दे देते, शायद वो निकल जाए और वो हमेशा आपको थैंक्स देंगे। उसको भी अंदर फील होंगी किसी की शुभ भावना ने मेरे को बाहर निकाला है। तो ये है निर्विघ्न बनना, बार बार उसके साथ क्लैश होने के बजाय, अपने संस्कारों को भी क्लैश करने के बजाय, उसको महसूस कराने के बजाय। कई बार कई लोग उसको महसूस करा के ही छोड़ते हैं अभी, है ना? उसको रियलाइज तो होना चाहिए ये गलत कर रहा है। अरे हम कौन होते, भगवान इतना कहने के बाद उसने रियलाइज नहीं किया तो क्या आपके बोलने से रियलाइज हो जाएगा? शायद आपकी दुआएं उसको रियलाइज जरूर करा लेंगी। तो समझदारी क्या है? तो इसीलिए कोई आत्मा के द्वारा अगर विघ्न आ रहा है तो यही उसको मदद करने का तरीका है। चौथी बात, नहीं पांचवी बात, पांचवी बात कि मान लो कि कोई परीक्षा आई है, कोई बहुत बड़ी चुनौती आई है, तो ये सोचना जरूरी है कि ये चुनौती या ये परीक्षा मुझे क्या सिखाने आई है, अनुभवी बनाने आई है। क्योंकि तो अंतर्मुखी होकर के, अंतर्मुखता में जाओ, अंदर जाओ और सोचो ये परिस्थिति मुझे क्या देने आई है, क्या अनुभवी बनाने आई है, कुछ सिखाने आई है, है ना? तो अंतर्मुखी होकर एनालाइज करेंगे तो जब ये महसूस होगा रे इससे मुझे इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, ये मेरी स्थिति को और ऊंचा बनाने आई है, बाबा के तरफ मेरी लगन को बढ़ाने आई है, तो वो चुनौती हमें चुनौती महसूस नहीं होंगी, लेकिन अंदर से उस वक्त निकलेगा वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। क्योंकि हर चीज जीवन में जब आती है तो कुछ न कुछ देने के लिए ही आती है। शायद उस फील्ड का मुझे अनुभव नहीं है और इसीलिए मेरे सामने वो चुनौती आई है, क्योंकि बाबा कहते हैं सर्व कला संपन्न, सोलह कला संपूर्ण यहाँ ही तो बनना है, तो वो शायद मुझ में वो कला जो मिसिंग है, लेकिन सतयुग में वो कला बहुत जरूरी है, तो वो कला भरने के लिए आई है। कई बार जैसे किसी में खाना बनाने की कला है ही नहीं और उसको सबसे बड़ा डर यही लगता है कि भाई कोई ना कोई रहना चाहिए, नहीं तो मुझे अगर मेरे सामने कोई नहीं रहा तो खाना बनाना तो मुझे आएगा नहीं। लेकिन कई बार चुनौती ऐसी होती है कि हमें ही बनाना पड़ता है, तो धीरे तो शायद वो कला मुझ में भरने के लिए ही ये चुनौती मेरे सामने बार बार आती है। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई स्टूडेंट अगर टीचर का फेवरेट होता है और उस टीचर को ये नजर आता है कि इस विषय में ये कमजोर है, तो बाद में क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है, क्लास के बाद कहेगा थोड़े और प्रैक्टिस कर लो, फाइनल एग्जाम में अगर किसी भी तरह से आया तो तुम्हें फेल नहीं होना चाहिए, भावना यही है। तो इसीलिए बाबा परम शिक्षक भी जब देखता है कि ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा इतना ईमानदार वफादार हाँ हर रीति से जब देखता है तो छोटी सी कमी के कारण कहीं ये फेल न हो जाए तो बाबा क्या करेगा, ड्रामा को कहेगा इसके सामने यही बात ले जाओ। बार बार अगर वो करते जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, एक्सपर्टीज आ जाएंगी। तो कुछ सिखाने के लिए, कुछ योग्यता भरने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए ये विघ्न बन करके मेरे सामने आया है ताकि मैं एक्सपर्ट हो जाए, ताकि लास्ट में जब विघ्न आए चारों तरफ से तो हमें पता है कि हाँ इस तरह के विघ्न में ये करना जरूरी है, इस तरह के विघ्न तो क्या होगा, स्थिति हलचल में आए बिना हम उनको सहजता से ओवरकम कर पाएंगे। इसीलिए है ना, तो कुछ देने के लिए आई, कुछ योग्यता भरने के लिए आई, अनुभवी बनाने के लिए आई है ना, तो उस समय निश्चय बुद्धि बन करके सोचो कि निश्चय बुद्धि होकर के मेरा अकल्याण कभी भी हो नहीं सकता है। तो बाबा कल्याण करिए, ड्रामा कल्याण करिए, मेरा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये मुझे कुछ देने के लिए आई है, कुछ सिखाने के लिए आई, तो सीख जाए। तो अनुभवी हो गए तो फिर अनुभवी कभी हार नहीं खा सकता है अंतिम पेपरों में, है ना। अच्छा चौथी बात, हाँ छठी बात, हाँ सॉरी छठी बात, इसका मतलब आप अटेंशन से सुन रहे हैं, ठीक है ना। छठी बात के शायद बाबा का प्यार मुझे ज्यादा अनुभव इसी विघ्न के माध्यम से होगा, है ना। कई लोग कहते हैं बाबा का अनुभव तो है ही नहीं, बाबा का अनुभव तो है नहीं, बाबा का अनुभव तो है नहीं। बाबा कोई जादू की छड़ी घुमाकर सामने खड़ा हो जाएगा और प्यार का अनुभव कराएगा क्या, नहीं। बाबा का प्यार का अनुभव कराने का तरीका भी निराला है एकदम, है ना। तो जब कोई विघ्न आता है जो मेरी सामर्थ्य से बाहर है और उस समय हम बहुत दिल से बाबा को याद करते हैं, जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण, दिल से मेरा बाबा कहो तो बाबा हाजिर हो जाएगा। तो उस समय जैसे दिल से मेरा बाबा अंदर से निकलता है तो बाबा सूक्ष्म में हाजिर होते हुए कैसे पलक झपकते वो क्रॉस हो जाता, तो उस समय आता है बाबा तू कितना प्यार करता है मुझे, है कितना। तो बाबा के प्यार का अनुभव कराने का यह तरीका है कि वो विघ्न आया उस समय बाबा की शक्ति का भी अनुभव होता है, बाबा के प्यार का भी अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं हमें तो, हम इतना बाबा को याद करते बाबा की शक्ति का अनुभव होता ही नहीं है। अरे उस दिन बाबा, आज मानो मेरे सामने कोई विघ्न आया तो उसी समय बाबा कोई शक्ति थोड़ी भरने वाला है, नहीं। जो हम योग करते हैं रोज थोड़ा थोड़ा जो योग कर रहे हैं, तो जो बूंद बूंद बाबा की शक्ति हम में भरती जा रही है, तो ये जो इकट्ठी की है बाबा की शक्ति बूंद बूंद भी, इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर अभ्यासी बनो। तो जब चलते फिरते उठते बैठते भी जब हम बाबा को याद कर रहे, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब याद कर रहे हैं तो जैसे बूंद बूंद बाबा की शक्ति अपने अंदर भरते जा रहे हैं। तो ये बूंद बूंद जो शक्ति भर रही है, जो इकट्ठी हो गई, तो जब कोई विघ्न आता है उस समय वो सारी शक्ति बाहर निकलती है, बाबा की शक्ति है, बाबा की शक्ति, और बाबा की शक्ति से ही हम उस विघ्न को क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन जब वो इकट्ठी रूप में बाहर आती है तब महसूस होता है अरे बाबा की शक्ति ने कैसा कमाल कर दिया। तो है बाबा की शक्ति, लेकिन उस समय कोई बाबा ऐसे जादू की छड़ी से एकदम अंदर में शक्ति भरने वाला नहीं, लेकिन रोज जो हम याद करते जाते हैं, रोज बाबा की शक्ति जो अंदर में भरते जा रहे हैं, तो ये बूंद 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 इकट्ठी होते 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 अंदर में आत्मा में इतनी, तो लास्ट में जो शक्ति जो विघ्न आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो परिस्थितियां आएंगी, जो तूफान आएंगे, तो उस समय वो इकट्ठी की हुई शक्ति जैसे सामना करके हमारा रास्ता साफ कर देती, हमें निर्विघ्न बना देती, और ऐसा लगेगा जैसे पानी पर लकीर। विघ्न आया, बहुत बड़ा था, मेरी शक्ति से तो मैं पार कर ही नहीं सकती थी, लेकिन बाबा की शक्ति ने कमाल किया। अब बाबा की शक्ति कहाँ से आई? तो जो हमने रोज याद कर करके इकट्ठी की हुई थी, वो शक्ति उस समय बाहर निकलती है, और तब महसूस होता है सचमुच मेरे में बाबा ने इतनी शक्ति भरी थी। कई बार नहीं होता है, इतनी शक्ति थी, ये तो पता ही नहीं था मेरे अंदर, इतनी बड़ी बात को क्रॉस कर दिया हमने। लेकिन ये बहुत का, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का, तब वो शक्ति अंदर जमा होती है, और तब वो शक्ति बड़े से बड़े विघ्न को भी पार करने में हमें क्या करेगी, ऐसा शक्तिशाली बना देंगी जो उसको एक सेकंड में क्रॉस कर देंगे, और लगेगा भी नहीं कि जैसे बड़ा विघ्न था। अच्छा, और जब उसको क्रॉस करेंगे ना, 10 लोग देखते तो होंगे, इतना बड़ा परीक्षा भी ये कैसे पार करेगा, देखते हैं कैसे पार कर, तो देखते हैं ना लोग भी, तो ये विघ्न ही वास्तव में हमें प्रत्यक्ष करने का आधार है, हमारी प्रत्यक्षता और हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता ये विघ्न करता है। तो विघ्न कितना कल्याणकारी है, विघ्न ही हमें प्रत्यक्ष करेगा सबके सामने, पास या फेल दोनों रूप से। ये पास हो गया तो भी प्रत्यक्ष होगा, लोग वाह वाह करेंगे, वाह कमाल है बाबा, तेरा बाबा सही है, तेरा बाबा तुझे, बाहर वाले भी कहेंगे तेरे बाबा ने मदद किया है ये तुझे, है ना। तो ये विघ्न हमें प्रत्यक्ष करेगा और हमारे द्वारा बाबा को भी क्या करेगा, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले जो निमित्त बनते हैं उसको भगवान की भी एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, मदद, एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाएंगी। इसलिए कहते हैं ये विघ्न लिफ्ट है जो हमें प्रत्यक्ष करता है और हमारे द्वारा बाबा को भी प्रत्यक्ष करता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे देखो, यहाँ पर भगवान पेपर भी आउट कर देता है। पेपर कहाँ से आएगा, लास्ट पेपर, अंतिम परीक्षा पेपर कहाँ से आएगा, अपनी ही कमजोरी से आएगा, कोई ना कोई तो पेपर कहाँ से आना ये भी पता है, पेपर आउट है। अच्छा, वो पेपर देने वाले भी हम हैं, पेपर लेने वाले भी हम, पेपर देने वाले भी हम हैं। अच्छा, पेपर देने के बाद वो पास या फेल का सर्टिफिकेट देने वाले भी हम ही हैं। क्या अंदर से आएगा, अरे पास हो गए तो खुशी बढ़ेगी एकदम, वाह बाबा वाह, अंदर से निकले तो पास किसने किया, बाबा ने या हमने, हमने खुद पास का सर्टिफिकेट दिया। और अगर फेल हो गए तो भी अंदर में अफसोस होगा, अरे फेल हो गए, संकल्प चला, माना संकल्प से सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। तो पेपर लेने वाले भी हम खुद, पेपर देने वाले भी हम खुद, पास या फेल करने वाले भी हम खुद, ताकि दोष किसी पर डाल ही न सके, क्योंकि इंसान ऐसा है ना जो किसी न किसी पर दोष जरूर डालता है। अगर कोई नहीं मिला तो बाबा तुम भी ऐसा करता है, मेरे फेल कर दिया, है ना। तो भगवान पर भी दोष डालने में देर नहीं करता है, इसलिए बाबा ने कह दिया पेपर आउट है, है ना। पेपर लेने वाले भी आप खुद, देने वाले भी आप खुद, हा? और पास और फेल ये सर्टिफिकेट देना भी आपको खुद को है, ताकि आप किसी पर भी दोष न दे सको, नहीं तो बाबा पर भी दोष दे देंगे, बाबा तुम भी पार्शियलिटी करता है, ये भी कह देंगे ना बच्चे। तो तो इसीलिए बाबा कहेगा मैंने थोड़ी कहा तुम फेल है, तुमने खुद को सर्टिफिकेट दिया तुम फेल है ना। तो इसीलिए हम किसी पर दोष नहीं डाल सकेंगे अंतिम समय, न भगवान पर दोष डाल सकेंगे, भगवान तूने पास किया या तुमने पार्शियलिटी किया या तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ये भी नहीं कह सकेंगे। बाबा कहेंगे मैंने तो पहले से ही बता दिया था, अब पेपर आउट कर दिया है, जब मालूम है अंतिम परीक्षा पेपर कहाँ से आना है, देने वाले की क्षमता भी हमारे अंदर है, और उसके बाद भी अगर हम फेल हुए तो क्या कहेंगे, वो पेपर भी हमें प्रत्यक्ष करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो कम से कम कैसे प्रत्यक्ष होना है दुनिया में है? बाबा ने इसीलिए कहा कि अब बाबा पर्दा उठाएं, प्रत्यक्ष करें सबको, पर्दा उठाएं। बाबा कई बार पूछते पर्दा उठाएं, अभी मूर्तियां तैयार हो गई, तो इसीलिए सब कुछ हमें ही करना है, तो उसके बाद भी अगर हम फेल हुए तो क्या कहेंगे। दुनिया भी हमें कहेगी अरे तुम्हें तो सब कुछ मालूम था, हमें तो कुछ भी पता नहीं था, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था उसके बाद भी तुम फेल हो गए, कहेंगे कि नहीं। तो क्या हुआ, भगवान की नाक कटाई, खुद भी नीचे हुए और भगवान की नाक भी कटाई कि नहीं। लोग तो क्या कहेंगे, अरे तू तो भगवान का बच्चा था ना, तुम्हें तो सब मालूम था ना, उसके बाद भी तुम फेल हो गए। तो ये हमने बाबा का नाम प्रत्यक्ष किया या डाउन किया, है ना, डाउन किया ना। तो अभी क्या करेंगे, तो निर्विघ्न बनना है। अभी हमारे सामने एक एक परीक्षा आ रही है, अंतिम समय चारों ओर से एक साथ में परीक्षा आएगी, तो इसीलिए जब अभी एक एक रूप में परीक्षा आ रही है तो अभी तो पास करते हुए एक्सपीरियंस्ड हो जाए, अनुभवी हो जाए, है ना। तो यही विघ्न हमें प्रत्यक्ष करने का आधार है, सोचो कितनी बड़ी बात है, है ना। और लास्ट में एक बात कहूंगी, क्या बनना चाहते हैं हम सभी का लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता बनना है किसी को, अभी भी टाइम है, मार्जिन है, लक्ष्य अगर बदली करना चाहो तो लक्ष्मी नारायण बनना है। अच्छा, जिसको राम सीता बनना हाथ खड़ा करे, कोई नहीं है, लक्ष्मी नारायण बनना है वो हाथ खड़ा करे, वेरी गुड। हाँ, अब लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन क्या हम गिनती कराते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना, अहिंसा परमो धर्म। अब ये लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन है। आज दुनिया में बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं सबसे सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सी होती है, आईएएस की होती है ना, आईएएस माना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाली एग्जाम सबसे कठिन होती है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट 2 या 3% ही होता है, 100 लोगों ने अपीयर किया तो 2 जने खाली पास होते, 3 जने पास होते और नहीं, इतनी टफ एग्जाम होती है। तो लक्ष्मी नारायण माना क्या, विश्व महाराजन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो तो खाली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो विश्व महाराजन, तो VMAS है ना, VMAS बन रहे हैं, उसके लिए अपीयर होने, कितने लोग अपीयर होते हैं, 33 करोड़ अपीयर हो रहे हैं, और पास कितने होते हैं, 8 पास, तो कितना परसेंटेज रिजल्ट हुआ, पॉइंट में हो जाता है। अच्छा, उसकी जो क्वालिफिकेशन है अभी, सर्व गुण संपन्न, तो गुण कितने हैं, 36, जो 36 गुण के 36 पेपर तो आएंगे या नहीं आएंगे भाई, नहीं तो कैसे पता चले मेरे अंदर नम्रता है या नहीं है, सहनशीलता है, तो एक एक गुण का एक एक पेपर तो आएगा या नहीं आएगा, आएगा आएगा सब तो 36 पेपर तो ये हो गए, जितनी बार फेल हुए रीअपियर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद 16 कला संपूर्ण तो 36 और 16 52 पेपर तो हो गए है ना। उसके बाद संपूर्ण निर्विकारी तो हर लेवल की प्यूरिटी का पेपर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अच्छा उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम अमृत वेले से रात्रि तक की हर मर्यादा का कितना वफादारी से पालना करते हैं, तो इतनी मर्यादाओं का पेपर आएगा कि नहीं। अब इतने पेपर से डरते तो नहीं है, इतना पेपर तो देना ही पड़ेगा, वीएमएस के लिए अपियर हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा राम सीता बनना है तो अभी भी मार्जिन है ना। लेकिन अगर किसी को राम सीता नहीं बनना है, लक्ष्मी नारायण के पेपर के लिए अपियर हो रहे और फिर कहे कि मेरे पेपर टफ न हो, तो या तो निकल जाओ। अगर लक्ष्मी नारायण के लिए ही अपियर होना है तो पेपर तो टफ होंगे ही है ना, और इतने पेपर तो देना पड़ेगा। फिर अगर डर गए हिम्मत हार गए तो क्या करेंगे नहीं, हिम्मत हारने वाले नहीं है ना, कोई हिम्मत हारने वाले नहीं है ना। और इसीलिए चलो 108 में तो आ जाए, 108 भी कोई बुरा थोड़ी है। अच्छा चलो 16108 वो भी तो रॉयल फैमिली है, उसमें तो आ जाए, त्रेता अंत तक की रॉयल फैमिली तो है, उसमें तो आ सकते हैं उससे नीचे नहीं है ना। तो पास विथ ऑनर तो 8 हो गए, 108 पास हो गए, और 16108 वो भी पासिंग मार्क्स तो हो गए कम से कम, तो वहां तक तो हम पहुंच जाए कम से कम है ना है? हाँ तो इसीलिए कहा कि ये नशा रहे, हम कौन बनने वाले हैं, कौन सी परीक्षा के लिए अपियर हो रहे हैं, वीएमएस हम कौन बन रहे हैं बाबा। इसलिए आईएएस कई बार याद करते तो मेरे को याद आता वीएमएस, हम वीएमएस बनने वाले हैं, तो हम कोई कम थोड़ी है दुनिया में। जो किसी ने हिम्मत नहीं रखी वो हम रख रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मुबारक हो आप सबको बीएमएस के एग्जाम देने के लिए, और उसमें भी निर्विघ्न सदा रहो, यही हमारी दुआएं कहो, हमारी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं आपके लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति,
ओम शांति। कितना कठिन कितना मुश्किल सब्जेक्ट, लेकिन इतना हंसते हंसते मेरे को तो कल टॉपिक बेन जी ने कहा ना कि निर्विघ्न स्थिति, मैंने सोचा था एक तो 10:30 का टाइम है नाश्ते के बाद का, और ये निर्विघ्न स्थिति में तो सब और भारी हो जाएंगे, लेकिन कितना सहज रीति से इतनी भारी सामान्य बातें नहीं थी मैं सुन रही थी, बहुत 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 गुह्य बातें थी, लेकिन इतना सहज रीति से हम सभी के सामने, सरल भाषा थी लेकिन स्पष्ट थी, वो देखा एकदम साफ शब्दों में कहा है, तो हमारे सामने चित्र अभी स्पष्ट है, क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसे विघ्नों को पार करना है, और किस प्रकार उसमें भी कल्याण का स्वरूप देखना है। बहुत बहुत दीदी को धन्यवाद कहेंगे और दिल से विश्वास दिलाएंगे कि अभी हर विघ्न को ऐसे जैसे आज मुस्कुराते हुए तालियां बजाते हंसते हंसते क्लास किया ना, ऐसे हर विघ्न को भी ऐसे पार करेंगे, ठीक है ना। ओम शांति। अभी 2 मिनट हम सभी बजाओ ताली बजाओ बाबा की याद में बैठेंगे।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात।